नमस्ते। प्रार्थना पहले शुरू करते हैं। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रमूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सबको नमस्ते। कल अगस्त 15 को हम सब ने अपने भारत के स्वातंत्र्य दिवस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया अपने अपने ढंग से। आज उसी स्वातंत्र्य दिवस के अवसर पर भारत के कुछ चीजों के बारे में हम विचार करेंगे। ये जो देश भारत है या जिसे हम भारत या इंडिया के रूप में जानते हैं, ये कोई 1947 से ये देश पैदा नहीं हुआ। ये देश लाखों साल पुराना है, हजारों हजारों सालों का इसका अपना इतिहास है। शायद दुनिया में ये आज के डेट में सबसे पुरानी सभ्यता, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो हम एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, दुनिया में किसी भी कोने में रहें, जो दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति का वहन करता है। 1947 के बाद हम जो हजारों सालों से जो हम कॉलोनाइज थे उससे छुटकारा पाके हम अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम लिया। अल्दो अभी भी हमारे देश में और भी बहुत सारे फ्रीडम की जरूरत है, पर जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो हमने 1947 को लिया। तो हमेशा से इस देश का नाम भी भारत या इंडिया या आजकल हिंदुस्तान नहीं रहा। तो पहले हम देखेंगे कि इस भारत का नाम पहले क्या क्या था। जो पुराना नाम हमें सबसे पहले मिलता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त जिसका सिंपल अर्थ है आवर्त मतलब स्थान प्लेस, ब्रह्म मतलब जहां, ब्रह्म मतलब परमात्मा, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म मतलब वेद का भूमि है। जो आज जिन नामों की हम चर्चा करेंगे वो भारत के पॉलिटिकल मैप नहीं है। ये सारे नाम आज जिस रूप में भारत है उस नाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। ना हम इंडिया के मैप के बारे में बात कर रहे हैं, मैप तो एक बिल्कुल अलग चीज है। हर राजा अपने समय में अलग अलग तरह का मैप बनाया, कितने किसने कितने ज्यादा एरिया पर राज किया, उसके हिसाब से भारत के मैप बनते गए। कभी कभी किसी किसी राजा के जमाने में तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया से लेकर नीचे थाईलैंड लाओस से तक भी भारत रहा, पॉलिटिकल मैप के दृष्टि से। श्रीलंका उस तरफ, म्यांमार, लाओस से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तक भी भारत एक था। और कभी सिकड़ते हुए छोटे छोटे राज्यों में भी बंटा। तो हम जब जिन भारत के अलग अलग नामों की चर्चा करेंगे, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर में जो प्लेस की इम्पोर्टेंस बताया गया रिलीजियसली, और उसका एक नाम दिया, उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, न कि पॉलिटिकली जो इंडिया का मैप बदलता रहा, उसके नाम भी बदलते रहे। तो पहला नाम जो हम चर्चा करेंगे, उसका नाम था ब्रह्मावर्त, जो दृशतवती और सरस्वती नदी के बीच में पड़ता है। जैसे मनुस्मृति की भाषा में सरस्वती दृशतवत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती नदी जो आज लुप्त हो गई है, बेसिकली ये आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से गुजरती थी, तो अब वो लुप्त हो गई है। दृशतवती अब वो भी नहीं है। तो इन दोनों नदियों के किनारे बहुत बड़ा छोटा सा हिस्सा होता था। इस देश को मानो ईश्वर ने बनाया हो, इस देश का नाम ब्रह्मावर्त था। इसका नाम ब्रह्मावर्त इसीलिए था कि ये यही एरिया है जहां ज्यादातर ऋषि मुनि तपस्या ज्ञान की खोज करते थे। आज भी अगर आप देखें हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे आगे सेंट्रल एशिया एरिया सब देखें, तो जितने भी वेदों में वर्णित जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं वैदिक लैंग्वेज में, वो वर्ड्स भी आज भी आपको पंजाबी में, अफगानी, जो लोकल अफगानी पश्तून, जो कि वहां की जो भी आदिवासी भाषा है, आज वो अरबी और पारसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए इस्लाम के कारण। पर अगर आप रूरल एरिया में जाएं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह से लेकर पंजाब, हरियाणा तक, तो जो भाषा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुआ है अरबी, पारसी वगैरह से, उसमें आपको वैदिक शब्द का झलक मिलेगा। तो ये ब्रह्मावर्त उस वेद आदि शास्त्रों का देश था, जहां ये सब चीजें, जहां ऋषि मुनि होते थे। उसी के बगल में ब्रह्मर्षि देश, ये ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश, तीनों का एक ही साथ एग्जिस्टेंस था। रिलीजियसली दीज आर थ्री डिफरेंट एरियाज, रिलीजियसली, पॉलिटिकली नहीं। इनका इंपोर्टेंस रिलीजियसली कम बहुत था। ब्रह्मावर्त सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखता था, उसके बाद आता है ब्रह्मर्षि देश। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाशुरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरम्। उस ब्रह्मावर्त से ठीक नीचे कुरुक्षेत्र देश, जो आज हरियाणा के पार्ट है, मत्स्य देश, वो भी उसी के आसपास है, दिल्ली मेरठ के आसपास, पंचाल जो पंजाब के आसपास एरिया है, शुरसेनक जो मथुरा है। ये पिक्चर से आप देख सकते हैं, ये पंचाल है, ये कोशल, और ये मत्स्य देश, और ये कुरुदेश। तो ये सब नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मर्षि देश। और ब्रह्मर्षि देश के ठीक नीचे जो दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा आता है, हिमवत विंध्ययोर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। तो सबसे ऊपर ब्रह्मा ब्रह्मावर्त, थोड़ा उसके नीचे आए तो ब्रह्मर्षि देश जो आज के दिल्ली मथुरा तक कवर करता है, मथुरा मेरठ वगैरह तक, और उसके बाद विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत जो अभी हम आगे देखेंगे, ये जो विंध्य, ये जो आप लाइन देख रहे हैं विंध्य पर्वत, यहां तक मध्य देश कहलाता था। ये तीनों देशों का एग्जिस्टेंस रिलीजियसली अलग अलग था। ब्रह्मावर्त सबसे पूजनीय था, वहां ऋषि मुनि ज्ञानी लोग मिलते थे, उसी हिसाब से कम होता होता मध्य देश तक आया। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी क्षेत्र में लोग नहीं रहते थे या राजा नहीं होते थे, पर रिलीजियसली इसका इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा होता था। तो तीन देशों का नाम आपने जाना, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि और मध्य देश। फिर भारत का एक और एक नाम पड़ा और उसका नाम है आर्यावर्त, अबोड ऑफ आर्याज। आ समुद्रात वही पूर्वा, दा समुद्रात च पश्चिमात, तयोरेवांतरम गिर्यो रार्यावर्तम विदुर्बुधाहा। तो पूर्व समुद्र बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम का समुद्र जिसको आज अरब की खाड़ी कहते हैं, अरब की खाड़ी तक, मतलब उड़ीसा से बंगाल, उड़ीसा से लेकर के गुजरात महाराष्ट्र तक, ये ईस्ट टू वेस्ट, फिर नॉर्थ से साउथ हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक कर्नाटक के बॉर्डर तक, इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त क्षेत्र था। ये भी रिलीजियस नाम है, पॉलिटिकल नहीं। पॉलिटिकली वो अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ होगा, कौन सा राजा कितना बड़ा एरिया पर राज करता है, इट्स ए डिफरेंट थिंग। जैसे आज भी पॉलिटिकली हमारा एक मैप है, पर कल्चरली अभी भी हम नेपाल भूटान और अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका में वो इंडियन माइंडसेट आपको मिलेगा। तो ये आर्यावर्त देश था जिसका बहुत सम्मान था। मनुस्मृति कहता है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ये वही आर्यावर्त है जहां सारे संसार से लोग ज्ञान पाने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे, चरित्र सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए इसी क्षेत्र को आते थे। कभी ये जगतगुरु था ये आर्यावर्त। इस आर्यावर्त की जो आपने मनुस्मृति या हमारे धर्मशास्त्रों में जो नक्शा बताया, ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट और हिमालय से लेकर विंध्य तक, ये जो रिलीजियसली बताया गया क्षेत्र है, ये नॉलेज और रिलीजियसली ज्ञान और धर्म के मामले में सबसे उत्कृष्ट स्थान था। उसके नीचे जो बाकी राज्य थे, देश थे, या बाहर से लोग यहां सीखने के लिए आते थे, ज्ञान वगैरह सीखने के लिए आते थे। तो ये भारत का दूसरा नाम है आर्यावर्त। भारत का जो तीसरा नाम, जो आज आज का जो भारत है, वो दो तरह का भारत है। एक इंडिया जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का देश है, और एक भारत जो नॉन अंग्रेजी, अंग्रेजी ना जानने वाले, कम जानने वाले लोग जिसको भारत कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा जनरली जो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में ये बात आती है, पढ़े लिखे लोग इसको भारत कम कहते हैं, पढ़े लिखे मतलब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसको भारत कम कहते हैं, इंडिया ज्यादा कहते हैं। तो हम उस भारत के बारे में भी जानेंगे, ये भारत का नाम कैसे पड़ा। तो भारत का नाम के लिए हमारे पास दो तीन रेफरेंस मिलते हैं। महाभारत का नाम भी महाभारत है, पहले इसका नाम जय था, ये जो महाभारत ग्रंथ है बाद में भारत, फिर महाभारत पड़ा। वो वही भारत और महाभारत जो देश का नाम भारत है। तो महाभारत में इसकी रेफरेंस आता है दुष्यंत और शकुंतला के। दुष्यंत जो बहुत बड़े राजा थे, उनकी जो प्रेम से विवाह की गई पत्नी शकुंतला, उन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ भरत, वो आगे जाकर के चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती अर्थात बहुत सारे, एक तरह के आज की भाषा में कहें एक पूरे कंटिनेंट का जो राजा बन जाता है, जिसके नीचे सैकड़ों हजारों दूसरे देश उसके सबोर्डिनेट बन जाते हैं। उस भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। और ये महाभारत भी उसी भरत वंश के संतान होने के, संतानों की स्टोरी होने के कारण इसका नाम भी भारत और महाभारत पड़ा। पर इस भारत के बारे में और भी कुछ नरेशंस हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराणों में आता है कि एक ऋषभ नामक के एक बहुत बड़े राजा हुए, मरुदेवी का पुत्र, और उस ऋषभ जी का जो बेटा है भरत, वो भरत भी चक्रवर्ती था और जिसके आधार पर ये देश का नाम भारत पड़ा। उसका कुछ रेफरेंसेस हम देखेंगे। ये विष्णु पुराण का रेफरेंस है, ऋषभो मरुदेव्याश्च ऋषभात् भरतो भवेत्, भरतात् भारतम् वर्षम्, भरतात् सुमतिस्त्वभूत्। ऋषभ जो मरुदेवी का पुत्र है, उनसे भरत पैदा हुआ, उस भरत से भारतवर्ष पड़ा। भरत एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे। उसी विष्णु पुराण में आगे आता है कि ततश्च भारतम् वर्ष मेतत् लोके शुगीयते, भरताय तह्यतः पित्रा दतम दत्तम प्रतिष्ठिता वनम। जब ऋषभ देव ने अपने बच्चे को, भरत को, बहुत पावरफुल देखा, उसने उसको अपना राज्य देके वानप्रस्थ लेकर चले गए। और वो भरत आगे जाकर इतना बड़ा राजा बना, उसके नाम से वो भरत पड़ गया। विष्णु पुराण में इसका जो मैप का जो नक्शा आता है, भारत जिस देश का नाम है, वो है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्, वर्षम तद् भारतम् नाम भारतीयत्र संततिः। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में भारत सागर, महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब की खाड़ी, ये तीनों तरफ से समुद्र और ऊपर हिमालय, इसके बीच में जो देश है उसका नाम है भारत और यहां रहने वाले लोगों का नाम है भारती। ये विष्णु पुराण के अलग अलग डेट्स मिलता है, कोई 4th to 5th century, कोई 4th to 5th BC ऐसा मानते हैं। पर भारत का एक बड़ा सुंदर अर्थ है, एक और नरेशन है भारत के बारे में। ये तो हुआ भरत के कारण, भरत नामक राजा के कारण इसका नाम पड़ा भारत। इसका एक तीसरा एंगल भी है। जैन साहित्य में ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर है, उनके जैन साहित्य पुराणों में वर्णन है कि वहां भरत नामक राजा हुआ, जो जैन राजा हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर ये जैन साहित्य है। पर इस भारत का और एक सुंदर नरेशन है, और वो है कि भारत देश का नाम भारत इसीलिए पड़ा क्योंकि भा, संस्कृत में भा शब्द का अर्थ होता है ब्रिलियंस, दीप्ति, प्रकाश, रत एंगेज्ड इन वर्ल्ड, जिस देश के लोगों को प्रकाश में, ब्रिलियंस में, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में, ज्ञान में हमेशा अपने आप को एंगेज करते हैं, उस देश को भारत कहा जाता है। हमेशा से ये रहा है, ये भारत भूमि अलग अलग राजाओं से अलग अलग राज्य बन के रहा, पर कल्चरली ये जो इंडियन सब कंटिनेंट है, जब हम भारत कहते हैं वो आज की भारत की बात हम नहीं कह रहे, जिसको आज आप लोग साउथ एशिया कहते हैं, जो एक रॉन्ग वर्ड है। द एक्चुअल वर्ड शुड बी इंडियन सब कंटिनेंट और इंडियन पेनिनसुला। ये जो इंडियन सब कंटिनेंट, जो अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान उस तरफ, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और नीचे साउथ में श्रीलंका तक, ये पूरा का पूरा एक देश का नाम है भारत, जिसको आज हम इंडियन सब कंटिनेंट आज तक कहते आ रहे थे। अभी ये नया ट्रेंड शुरू कराया गया वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा इंडिया शब्द को हटाने के लिए, अब वो उसको साउथ एशिया कहते हैं और हमारे इंडियन लोग भी उसे ट्रैप्ड होते जाते हैं, इसको साउथ एशिया बोलने लगते हैं, क्योंकि इंडिया, इंडियन सब कंटिनेंट कहने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। पर उनको ये नहीं प्रॉब्लम होता है जब अमेरिका कंटिनेंट बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ कंटिनेंट, उसमें मेक्सिको भी अमेरिका कंटिनेंट में आता है, कनाडा भी आता है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। पर इंडियन सब कंटिनेंट बोलने से पढ़े लिखे इंडियनों को ही प्रॉब्लम होने लग जाता है, सो दे स्टार्टेड टू कॉल इट साउथ एशिया। सो ये मेक श्योर करिए कि इसको साउथ एशिया के जगह इंडियन सब कंटिनेंट बोले, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार वगैरह सब आ जाते हैं। हम ही लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, या पता नहीं वो वेस्टर्न थ्योरी में ट्रैप्ड हो जाते हैं और उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये जो भारत है, ये हमेशा से जान में लगा रहने वाला देश रहा। सारे दुनिया का आज भी जो सबसे पुराना ग्रंथ है, जो बुक है, जो ओल्डेस्ट बुक ऑफ द ऑफ दिस प्लानेट, ऋग्वेद है। जब दुनिया में मोस्ट ऑफ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जो आज बहुत पावरफुल हैं, तब वहां नेटिव लोग भी नेटिव लोग होते थे, उनको खाना बनाना भी नहीं आता था, कच्चा खाना खाते थे, शिकार करते थे। तब भारत में वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों की डिबेट और चर्चा हुआ करता था। और ये यही देश है, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि भारत शब्द को आप ठीक से समझें। और ये यही देश है जो पिछले 30-35 हजार साल से जो ज्ञान की चर्चा करता है, उसमें कभी भी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट होता है, साइंस का जो डेवलपमेंट होता है, कभी उसके अगेंस्ट नहीं गया है। कोई भी नया साइंटिफिक आविष्कार हुआ, कभी कोई भारत में उसके खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं चला। जैसा कि यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में हमेशा से चलता रहा है और आज भी चलता है। इवन आज भी आप अमेरिका में देखेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, उसको चर्च वाले नहीं मानते हैं और चर्च को चर्च के सपोर्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी वगैरह, वो उसको नहीं मानते हैं। पर भारत में हमेशा से साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और रिलीजन दो अलग अलग चीजों के रूप में कभी नहीं देखा गया, उल्टा ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। भारत का साइंस हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बेस पर बना और भारत की स्पिरिचुअलिटी हमेशा साइंटिफिक सोच के साथ बना। जब से भारत में सुपरस्टिशियन बढ़ने लगा, भारत के लोग ब्लाइंड बिलीवर बनने लगे अपने गुरुओं का, अपने पूजा पाठ की पद्धतियों का, ज्ञान को ढूंढने का छोड़ करके गुरुओं के चेले बनने लगे, तब से हमारा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म हो गया। पर अगर आप प्राचीन वैदिक और वेद के बाद के ट्रेडिशन को देखें, उस स्पिरिचुअलिटी में भी आपको वो साइंटिफिक एटीट्यूड दिखता था। और जिसका रिजल्ट है कि हमारे यहां, जो आगे जाकर मैं अभी चर्चा करूंगा कि भारत का वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, वो सारे कंट्रीब्यूशन 3000-4000 साल पहले है, अभी कुछ नहीं है, बहुत कम है। वो अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, एस्ट्रोनॉमी, जिस भी फील्ड में भारत का कंट्रीब्यूशन है, वो सब स्पिरिचुअलिटी के लिए ही यूज होता था। मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी या जो धार्मिक व्यवस्था है वो साइंटिफिक सोच के बेस पर होता था। तो ये एक ऐसा देश रहा जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी वो एक दूसरे को कोऑप करते थे। किसी दूसरे कल्चर में आपको, पुराने कल्चर में, इवन आज भी ये नहीं मिलेगा। हमेशा रिलीजन और साइंस फाइट करते हैं। दुनिया के हर साइंटिस्ट नॉन रिलीजियस हो जाते हैं और रिलीजियस लोग साइंस को क्रिटिसाइज करते हैं। पर आपको भारत में ऐसा कोई शास्त्र मिलेगा नहीं, कोई लिटरेचर या कोई धर्माचार्य, जो पढ़ा लिखा धर्माचार्य हो, ज्ञानी, शास्त्रों को जानने वाला, वो कभी साइंस का अपोज नहीं करता या साइंस की किसी भी थ्योरी को कभी अपोज नहीं करता। ये है भारत। भा ब्रिलियंस, नॉलेज, रत इन्वॉल्व होने वाला देश। ये हमारे डीएनए में रहा है, जो पिछले कुछ सालों से हट गया क्योंकि हम भी उन्हीं के ट्रैप में आए। पिछले 1200 साल से गुलाम रहे, तो गुलामी की मानसिकता में रिलीजियसली भी हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। ये है भारत का नाम के पीछे जो प्लस अभी है। इस देश के और भी कुछ नाम है, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। वो है, इस देश को हम आज इंडिया कहते हैं, एक नाम हिंदुस्तान है। हम जानने की कोशिश करेंगे ये हिंदुस्तान, हिंदू रिलीजन का नाम हिंदू पड़ गया, हिंदी भाषा का नाम पड़ गया, और इंडिया, इन चारों में एक कनेक्शन है। ये चारों एक दूसरे, एक्चुअली ये चारों एक ही हैं। उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। इंडिया, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, इसकी बैकग्राउंड जानेंगे। ये आप देख रहे हैं एक इंडिया के मैप में, एक वैसे ही लूज मैप में, ये नदी है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जाता है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा भारत में भी है। इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, मतलब भारत, पाकिस्तान आदि के लोग, इसको सिंधु कहते हैं, और वेस्टर्न लोग इसको इंडस कहते हैं। ये जो सिंधु नदी है, ये जो आपने मैप देखा, ये सिंधु नदी से भारत के बहुत सारे नाम पैदा हुए। पहला नाम आया हिंद या हिंदू, जो सेंट्रल एशिया से या वेस्टर्न एशिया से, स्पेशली ईरान, इराक वगैरह से जो लोग आए। अब तो हिमालय, बहुत बड़ा हिमालय है, तो इसको क्रॉस करने के लिए देखा, ये जो बीच में इंडस रिवर है, हिंदू, वो सिंधु नदी, सिंधु नदी, ध्यान रखिए, इंडस रिवर का कॉन्टेक्स्ट हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अभी करेंगे। सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी के उस पार एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, वहां के बहुत बड़ी आबादी, मतलब हैबिटेट है, जहां बहुत लोग रहते हैं, उनके अपना कल्चर है, रिलीजन है, फेथ है, रीच है। तो उसको उन्होंने सिंधु से रिलेटेड होने के कारण, क्योंकि पर्शियन और ईरानियन भाषा में सा को, जो पर्शियन प्राचीन भाषा है, सा को हा हो जाता है, भारत में भी होता है। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, जैसे असम है, तो असम में भी सा को हा कहते हैं, अच्छा को शा कहते हैं। जैसे असम को वो अहम कहते हैं, चाय को शाय कहते हैं, चा को शा कहते हैं, तो हा होता है। इसी तरह सिंधु को वो हिंदू कहने लगे। तो हिंदू नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो है हिंदू। हिंदू रिलीजन का नाम नहीं था। जो भी उस सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग हैं वो हिंदू, उनका कल्चर हिंदू, उनकी भाषा हिंदू, उनके रहन सहन हिंदू। और जो और एक नाम उससे रिलेटेड मिलने लगा, हिंद। वो सिंध से, कुछ लोग सिंधु को सिंधु ना करके सिंध बोलते थे, सिंध देश आज भी है जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, गुजरात के पास था, तो बहुत सारे लोग उसको हिंद कहते हैं। तो सिंधु नदी के उस पार जो भी है, इवन वो तमिलनाडु हो, केरला हो, बंगाल हो, या यूपी हो, या जम्मू कश्मीर हो, या हिमाचल हो, वो सब हिंद हैं, उनकी भाषा हिंदी है। हिंदी जब आप वो सुनते हैं, आज तो हमने एक एक लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को आज आप हिंदी बोलते हैं, वो उसका नाम हिंदी सिर्फ 150-200 साल से पड़ा, उससे पहले इसका नाम हिंदी नहीं था, ये अलग अलग नामों से जाना जाता था, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, अलग अलग नामों से जाना जाता था, उन सबका एक कॉम्बिनेशन करके एक उसका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट बना के इसका नाम हिंदी रखा गया। जब नॉन इंडियन कोई आपको हिंदी बोले, हिंदी भाषा लैंग्वेज, वो हिंदी हिंदी के लिए नहीं, वो हिंदी तमिल को भी हिंदी कहता है, बंगाली को भी, मराठी को भी, तेलुगु को भी, हरियाणी को भी, पंजाबी को भी, हिंदी को भी, वो सबको हिंदी कहता है। हिंदी मतलब हिंद, सिंधु नदी के उस पार की जो भी भाषाएं हैं वो सब हिंदी हैं, वहां के लोग हिंदू हैं, वह उस देश का नाम हिंद है। तो हिंद, हिंदी, हिंदू, ये एक ही नाम है जो सिंधु नदी के कारण नॉन इंडियन लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। पहले हमने जाना कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारा जो हमारे द्वारा हमारे लिए जो नाम दिया गया था वो ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यावर्त, भारत। तो बाकी जितने नाम हम अभी चर्चा करेंगे वो सब नॉन इंडियन द्वारा दिया गया, उसमें हिंद, हिंदी, हिंदू। हिंदू जब आपको सुनने को मिलता है अरबियन या पार्शियन लोगों के द्वारा या उससे ट्रांसलेटेड हुए लिटरेचर में, वो हिंदू धर्म की बात नहीं थी। इस धर्म का नाम हिंदू कभी नहीं रहा, ये तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता रहा। हिंदू धर्म भी ये बहुत रिसेंट नाम पड़ा, जबकि हिंदू शब्द पूरा का पूरा इंडियन को, जो भी इंडियन है वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, कुछ भी हो, वो हिंदू है। अरबियन लिटरेचर में इवन आज भी कोई भारत से कोई मुसलमान जाए अरब की कंट्री में, सऊद अरबिया, एमिरेट, कुवैत, इराक, ईरान, तो वो उसको हिंदू बोलते हैं। हम लड़ाई करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, वो उसको हिंदू बोलते हैं। हिंदू मतलब द पर्सन हु बिलोंग्स टू हिंद, इंडिया। उसका रिलीजन इस्लाम है पर ही इज ए हिंदू, कल्चरली और ज्योग्राफिकली वो हिंदू है। ये हिंदू, हिंदी, हिंद शब्द की उत्पत्ति सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया से ये शब्द हमें मिला। भारत का और एक नाम जो बहुत पॉपुलर है, खास करके अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में सबसे पॉपुलर है, वो है इंडिया। इंडिया भी इसी हिंदू का ही स्टेप ब्रदर है। ये हिंदू और इंडिया एक ही चीज है। अरब के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग सिंधु को सिंध के जगह हिंद बोलते थे, इसीलिए हिंद, हिंदी, हिंदू बना। वेस्टर्न लोग जब ग्रीक, रोमन, पर्तुगीज, सबसे पहले तो ग्रीक आए बीसी में, ग्रीक और रोमन जब आए यवन, वो पर्तुगीज वगैरह तो आपके 16-17 सेंचुरी में आए। जो ग्रीक की बात कर रहे हैं वो बीसी फिफ्थ बीसी, 500 BC, 600 BC, 400 BC में ग्रीक भारत आ चुके थे। इवन अलेक्जेंडर का भी आप वो सुनते हैं, तो वो इसको इंडस कहते थे। उनके जो लोग घूमने आते थे उसका नाम था इंडस। आज भी अंग्रेजी में इसको इंडस रिवर कहा जाता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे इंडियन लोग भी, भारत लोग भी इसको इंडस ही कहते हैं। इस इंडस के पास रहने वाले लोग, इंडिया का देश का नाम है इंडिया, और यहां के रहने वाले लोग इंडियन, इसका कल्चर इंडियन, इसका रिलीजन इंडियन, इसकी लैंग्वेज इंडियन। इवन जो एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर देखें वो इंडियंस के लिए जो शब्द यूज करते थे पता, इंडोई, INDOI, इंडोई, वो इंडोई इस इंडस से। तो आपने जाना कि ये जो सिंधु नदी बह रही है इसका आपके जो नॉन इंडियन नाम से कितना कनेक्शन है। तो आप इंडिया कहो, हिंद कहो, हिंदू कहो, हिंदुस्तान कहो, वो इसका मतलब है सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग। वेस्टर्न लोगों ने इंडिया इंडोई कहा और जो एशियन लोग इसको हिंद हिंदू हिंदुस्तान कहे। तो ये सब भारत के नाम है, ये नॉन इंडियन के द्वारा दिया गया नाम, और पहले जाना इंडियन लोगों के द्वारा दिया गया नाम। और एक इंटरेस्टिंग नाम है भारत के, एक नहीं बहुत सारे नाम है, वो भी आपको मजा आएगा। वो है जो चाइनीज और जापानीज, ध्यान रखिए चाइनीज और जापानीज एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनका जो हेरिटेज है वो एक ही है, लैंग्वेज फैमिली भी एक ही है। तो चाइनीज नाम है थ्यांशु, थ्यांहु, और जो जापानीज वर्ड है वो है थेंजीकू। और ये जो दोनों शब्द आपने जाना, थ्यांजु एंड तेंजुकू, ये भी इसी सिंधु नदी से, सिंधु नदी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सिंधु से, सिंधु को वो थ्यांजु कहते थे, हु थ्यांहु, मतलब सिंधु का ध का ह बन गया हु, और सी को थ्यांशु थ्यांहु, और बिगड़ते बिगड़ते तेंजुकू बनने लगा। तो जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में भारत को थ्यांजु और तेंजिकू बोलते हैं। मैं शायद ठीक रूप से चाइनीज और जापानीज प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, पर उसका वर्ड आप देख लीजिए, ये है उसका वर्ड थ्यांजु एंड थ्यांजु तेंजिकू। इवन आज भी जो चाइनीज इंडिया के लिए या भारत के लिए जो चाइनीज वर्ड है, मतलब आप चाइना जाएंगे वो आपस में जो बात करते हैं भारत के बारे में, वो भारत को अपनी भाषा में बोलते हैं यिंडू, YNDU, अंग्रेजी में होगा वो, चाइनीज भाषा में जो भी होगा वो। इंडू क्या है, यही हिंदू, हिंद सिंधु। तो इस सिंधु नदी का भारत के फॉरेन लोगों के द्वारा नाम दिया जाने में बड़ा इंपैक्ट रहा। खाली इतना नहीं, इसका और भी सिंधु नदी से जुड़े हुए और एक इंटरेस्टिंग नाम है भारत का, और वो है होडू। ये होडू भी उसी सिंधु से बना हुआ शब्द है। ये होडू जो भारत का नाम है ये हमें हिब्रू भाषा में मिलता है। हिब्रू भाषा आप जानते हैं इजराइल की सबसे प्राचीन भाषा है, जो बीच में ऑलमोस्ट लुप्त हो गई थी, पर ज्यूस इजराइल लोगों का जो नेशनलिज्म है उसको कारण उन्होंने इसको पिछले 50-60 साल से दोबारा रिवाइव किया। वो हिब्रू भाषा वैसी जैसे संस्कृत भाषा हमारे यहां लुप्त प्राय हो गई थी या हो रही है, पर इजराइल लोगों ने उसको रिवाइव किया। आज इजराइल की सारे काम हिब्रू में होते हैं। तो वो जो हिब्रू, जो बिब्लिकल हिब्रू जिसमें उनका ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह बाइबल वगैरह लिखा गया था, उसमें भारत को होडू कहा जाता है। और उनका एक बुक है, बुक ऑफ इस्थर, पार्ट ऑफ जीविस तनक एंड क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट, में होडू शब्द मिलता है। उसमें ये डिस्क्राइब होता है, इन इस्थर 1:1-8:9 में डिस्क्राइब होता है कि अहासुरेशस असुरा, जिसको वो संस्कृत में हम असुर कहते हैं, असुर का मतलब देवता, वो जो हिंदी और मॉडर्न संस्कृत में असुर का मतलब तो हो जाता है राक्षस, डेविल, पर जो वैदिक संस्कृत में असुर शब्द का मतलब देवता होता है। और जोरास्ट्रियन पारसी लैंग्वेज में भी, और वो सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया के जो हिब्रू वगैरह में भी असुरा या अहार, अहुरा, इसमें भी वो देवता है। तो वो जो अहुराज है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज किंग रूलिंग, और उनको वो राजा के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था जो 127 प्रोविंसेस पर राज करते थे। और वो कहां से कहां तक, होडू से लेकर इथियोपिया तक। और वो होडू एक्चुअली आज की जो इंडिया है उसके लिए कहा जाता है, वो भी उसी सिंधु से निकला और ओल्ड पर्शियन में, जिसको हम हिंदू कहते हैं। तो ये हमने आज एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया आपको समझाने में भारत के कितने सारे नाम है। आप तो सिर्फ जानते हो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और उसमें इंडिया और हिंदुस्तान एक ही चीज है। इंडिया, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, होडू, तेंजू, त्यांजू, ये सब एक ही बात है। ये सब फॉरेनर के द्वारा दिया गया नाम, हमारे देशी लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा अपने लिए जो नाम था वो था ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और भारत। तो इन नामों को जानिए, आज के इस स्वतंत्र भारत पर अपने नामों को जानिए। अब हम आते हैं कुछ और, इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और कंटिन्यूअस, मतलब एक तो सिविलाइजेशन होता है जो बीच में ब्रेक होकर के नए नए सिविलाइजेशन आ जाते हैं, एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। कम से कम 35,000 ईयर ओल्ड एक सिविलाइजेशन है। और इसकी खास बात क्या है, भारत ने पूरे हिस्ट्री में, हजारों सालों के हिस्ट्री में, ना कभी किसको, किसी पर आक्रमण किया, इन्वेड किया किसी देश को, पूरे हिस्ट्री में ना किसी का टर्चर किया, ना किसी के सोसाइटी को बर्बाद किया, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। ना हम, अगर हमारा राजा कोई राज्य जितना भी था तो उसको कंक्योर करने के बाद उन लोगों को जैसे स्लेव बनाया जाता है, वहां की महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, हमेशा से रहा है भारत में, ये भारत इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारत कॉन्टिनेंट में ऐसा कभी नहीं रहा। ये हमारे भारत की एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, हम कभी आक्रामक इन्वेडर नहीं रहे। यद्यपि हमारी संस्कृति, भाषा पूरे एशिया से लेकर के ईस्टर्न यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से, साउथ अमेरिका तक फैला हुआ था, वो हमारा सॉफ्ट पावर था। सॉफ्ट पावर समझते, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को लोग अपने आप प्यार से, आदर से स्वीकार करते रहे, ये भारत की खास बात है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, भारत जो शब्द है उसमें इसका भाव यही है, ऐसे देश जिसके लोग ब्रिलियंस में, ज्ञान विज्ञान में हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखा करते थे। मुझे थे कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 1,000-1,500-2,000 साल से हमारा वो साइंटिफिक एटीट्यूड भी खत्म हो चुका है। इवन हमारे जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं वो भी इतना सुपरस्टिशन को पालने वाले और ब्लाइंड बिलीवर हैं, वो कहना मुश्किल है। पर हमारी जो संस्कृति है जिस पर आप प्राउड फील कर सकते हैं, वो एक बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड को मानने वाला। हजारों सालों से हमने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट में आपके डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आपको आश्चर्य होगा जो फिल्म आज आप बनाते हैं, मूवीज, नाटक, ड्रामा, इस पर एक शास्त्र, कितने शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, 600 बीसी, 400 बीसी में भरतनाट्य शास्त्र, और जिसमें सैकड़ों चैप्टर हैं, मेकअप रूम कैसा होगा, एक्टिंग कैसा होगा, स्टेज कैसे बनाया जाएगा, उन चीजों पर डिस्कशन है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा भी जो हमारे भाषा विज्ञान, जो एक नया फेनोमेना है आज के साइंस में, लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं, ये लिंग्विस्टिक तभी एग्जिस्टेंस में आया इस दुनिया में जब यूरोपियन लोगों को पहली बार संस्कृत का ज्ञान हुआ, और जो पता चला ये जो संस्कृत भाषा है वो यूरोपियन लैंग्वेज न केवल इंडियन लैंग्वेज की मदर है, ये मोस्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, सेंट्रल एशियन लैंग्वेज, सेंट्रल एशिया मतलब जिसमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कर्गिस्तान वगैरह जो के आते हैं, उन सब में इसका कितना प्रभाव है। तो उसके बाद एक लिंग्विस्टिक नाम का एक साइंस पैदा हुआ, लैंग्वेज साइंस, जिसमें ये स्टडी होता है कंपैरेटिव स्टडी और लैंग्वेज की जो कनेक्शन, जो उनके फैमिली रूट ढूंढने का, वो भी भारत का ही एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पूछें भारत को दुनिया का क्या, दुनिया को भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, मजेदार बात है कि पिछले 200-400 साल से हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम है, मुश्किल से 5-7 लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। पर भारत का जितने भी कंट्रीब्यूशन है सब एंशिएंट इंडिया के थे, तो आप समझ सकते हैं कितना हम साइंटिफिक एटीट्यूड रखते थे। ये दुनिया को जीरो देने वाला भी हम ही है, नंबर सिस्टम भी भारत ने दिया, द प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो पाए का वैल्यू सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इवन आप उन्हें मजेदार ध्यान दिखे, जो ज्योमेट्री है ये संस्कृत में इसको ज्यामिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं, वो आज भी उनके पास कोई शब्द नहीं है, उसको भी उन्होंने आज इटीज लिया है, शब्द भी वही लिया, ज्यामिति थोड़ा वेस्टर्नाइज एक्सेंट में ज्योमेट्री बन गया, त्रिकोणमिति त्रिकोणमेट्री बन गया, क्योंकि ये कंसेप्ट प्योरली इंडियन कंसेप्ट है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरियम देखें तो उसमें ए टू जेड आपको भारत की जो शुल्ल सूत्र है वो उसका एक तरह की कॉपी मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने कॉपी किया नहीं किया, पर शुल्ल सूत्र का एक तरह का वो ट्रांसलेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, जो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरी के नाम पर। इसी तरह आयुर्वेद, आयुर्वेद की जो दो ब्रांच है, मेडिसिन और सर्जरी, जिसके चरक आचार्य हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के और सुश्रुत फाउंडर हैं सर्जरी के, शल्य और औषध चिकित्सा, इन ये दुनिया का सबसे पुराना बहुत ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सिस्टम है। वो अलग बात है कि बाद में हमने उस पर बहुत रिसर्च नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, जिसके कारण आयुर्वेद बहुत पीछे चला गया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के तरह हमारे देश में मिडिल एज में, ब्रिटिश एज में, आफ्टर ब्रिटिश एज में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम आयुर्वेद पर फोकस करते, उसमें अच्छा बजट देते, रिसर्च का स्कोप करते, हो सकता है हम दुनिया में एक पैरेलल मेडिकल सिस्टम चला रहे होते जो कि ज्यादा नेचुरल होता, पर वो हमारी आयरनी है। इसी तरह ये जो मार्शल आर्ट्स आप सीखते हैं, आपके बच्चे सीखते हैं, जनरली ये ईस्ट एशिया का होता है, या तो चाइनीज या जापानीज या कोरियन होता है, पर खुद चाइनीज, जापानीज, कोरियन मानते हैं, इवन अमेरिका में भी आप जाएं जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं, ये कुंफू हो या अलग अलग जो जो चाइनीज आर्ट सिखाते हैं, वो खुद जब बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ भारत से गुरु आकर के हमें सिखाया और भारत से हमने ये सीखा है। केरला में 200 बीसी इसकी ओरिजिन है, इसको कहते हैं कलरी पयट्टू, साउथ इंडिया, जिसके जो कि योग का एक पार्ट है, योगासन का, हठ योग का एक पार्ट है, और धनुर योग का भी पार्ट है, धनुर्वेद जो कि साइंस ऑफ वार है, तो धनुर्वेद मेडिसिन, जो आयुर्वेद और योगा जो हठ योग माला जिसमें आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो आपको फिजिकली फिट रखे, आपको वॉरियर बनाने के लिए हेल्प करे और फिजिकली भी आपको फिट रखे स्वास्थ्य की दृष्टि से और वार की दृष्टि से, जो एक आर्ट था बेसिकली, ये ज्यादा केरला में सिखा जाता था और केरला से जा करके पूरे चाइनीज सब कॉन्टिनेंट में, जापान कोरिया वगैरह में पॉपुलर हुआ। और वो जो कुंग फू है वो भी ये भारत से चाइना 500 एडी के करीब गया। और एक मजेदार बात, जो इवन जो नेविगेशन सिस्टम है, आर्ट ऑफ नेविगेशन, ये भारत में 6000 साल पहले से हमारे यहां इसका नॉलेज था। और मजेदार बात देखिए, ये नेविगेशन जो वर्ड है अंग्रेजी में, ये वर्ड भी उन्होंने आज इट इज संस्कृत से लिया है। संस्कृत में इसको नाव गमन या नाव गति, नाव कहते हैं नौका, नेवी, उसका अंग्रेजी में जो शब्द बनता है जो नेवी, जो आर्मी का एक पार्ट होता है जल सेना, उसको सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में नेवी कहते हैं। वो नावी कहां से आया? संस्कृत में नौ शब्द है नाव। तो ये जो नाव गति से नेविगेशन शब्द है नौ, नेवी, ये इस भारत से न केवल भारत का साइंस अपितु उसका जो नाम था वो भी आज इट इज सारे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी तरह बहुत सारे खेलों के मामले में, चेस आज कितना पॉपुलर है, हॉकी तो अब इतना पॉपुलर रह नहीं रहा, ये सब भारत का योगदान है। इसी तरह जो कॉस्मोलॉजी के ऊपर, सृष्टि कैसे हुई दुनिया में, अगर इसके ऊपर सबसे पहले कहीं चर्चा हुई वो भारत में हुई। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से लेकर मनुस्मृति तक आपको सृष्टि की, जो मैं वो पुराणों के द्वारा बताया गया सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ा माइथोलॉजिकल है, प्योर साइंटिफिक के वे में, जो आजकल कॉस्मोलॉजिस्ट जैसे काम करते हैं, बिग बैंग थ्योरी, उससे पहले बिग बैंग से पहले क्या सिचुएशन था संसार का, उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ, इन सबका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अपने वे में वैदिक काल से लेकर चलता आ रहा है, जो कि हजार हजार साल पुराना है। इसी तरह पेड़ों में जो जीवन है, वैसे इंडियन साइंटिस्ट ने भी, जगदीश चंद्र बसु जिनको नोबेल मिला, इस पर काम किया, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, कि पेड़ों में भी जान होते हैं। और हमारे लिए तो वेद उपनिषद, हर वो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो शास्त्रों को पढ़ता है या मेडिटेशन करता है उसको पता है, कर्म सिद्धांत में हम चर्चा की कि पेड़ भी आपके ही रिश्तेदार होते हैं, उनमें भी वही आत्मा होती है। और एक दो बात करके कंप्लीट करें क्योंकि टाइम हो गया है, आज बड़ा सुंदर टॉपिक चल रहा है। भारत, जैसे हम चर्चा करे थे, भारत ये शब्द बहुत मधुर सिर्फ नहीं, बहुत पावरफुल वर्ड है भारत। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों भारत के लोग अपने देश को भारत नहीं बोलते हैं, वो इतना पावरफुल शब्द है। ये भारत जो कि भा में, एक्सीलेंसी में डूबे रहने वाला था, दुनिया में मोस्ट ऑफ देशों में जहां इलिटरेसी लोग नेटिव लाइफ, वाइल्ड लाइफ जीते थे, हम 700 BC में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज थे, जिसका आज भी जो खंडहर मिलता है तक्षशिला, ऐसा नहीं कि एक ही था, कितने यूनिवर्सिटी थे उनमें एक तक्षशिला जो आज भी मिलता है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है। 700 BC में जहां सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोग पढ़ाकर बच्चे पढ़ते थे, और आसपास के देशों से, मतलब आज के हिसाब से काउंट करें तो चाइना, जापान से लेकर के थाईलैंड, कंबोडिया से लेकर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान से लोग आकर के वहां पढ़ते थे। 600 BC में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का वो एक अवधारणा बनी हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बौद्ध शासन काल में बना 400th century में, वो सबको पता है। और ये हमने दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देखें उसमें आपको दर्जनों दर्जनों यूनिवर्सिटीज के, विक्रमशिला ऐसे दर्जनों यूनिवर्सिटीज के रेफरेंसेस मिलेंगे, जो एंशियंट टाइम में हम कितना हायर स्टडी के ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे। इसी तरह सारे दुनिया को जो रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है भारत का, वो भी बड़ा अनोखा है। एक तो चार दुनिया में जो जो आठ बेसिक मेन स्ट्रीम रिलीजन है, आठ मेन स्ट्रीम रिलीजन, उसमें से चार तो भारत में ही पैदा हुए हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसको बाद में आप हिंदू कहते हैं, उसी से निकला बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। पर ये तो भारत में ये चार रिलीजन ओरिजिनेट हुए। जो भारत के बाहर भी जो रिलीजन हुए, जोरास्त्रियन सबसे पुराना, जो पारसी जिसको आजकल आप ईरान कहते हैं, फिर ज्यूस जो जुदाइज्म जो इजराइल में, ये दोनों पुराने धर्म है, उनसे निकले क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये चार। अगर आप हिस्ट्री देखें, भारत के हिस्ट्री, सारे दुनिया से जब जुदा ये ज्यूस लोगों को भगा रहे थे मार के इजराइल से, जहां भी गए, उसमें से जो भारत आए 200 BC में, ज्यूस लोग जोरास्त्रियन लोग भारत आए गुजरात में, केरला में, गोवा के तरफ, वो 200 BC से आए हुए जो लोग आज भी भारत में जोरास्त्रियन के रूप में है, ज्यूस के रूप में है। किसी ने उनको कन्वर्ट नहीं किया, किसी ने उनको टर्चर नहीं किया, किसी ने उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया, पूरी फ्रीडम के साथ आज भी वो 2000 साल से पुराने, 2000 साल से ज्यादा आज भी वो भारत में सेफ सिक्योर हैं। भारत तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 65 या कितने में सेकुलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा इंदिरा गांधी के द्वारा। पर आप सोच सकते हैं जो इंडियन हिंदू लोगों का जो माइंडसेट कैसे नेचुरली सेक्युलर, सेक्युलर इन द सेंस कितना लिबरल था, प्लूरलिस्टिक था। सेक्युलर एक्चुअली इज अ बैड वर्ड, इट्स बेस्ट वर्ड इज प्लूरलिस्टिक था। कि हिंदू राजाओं ने, वो लोग जब आते थे उनको रहने की जगह भी देते थे और उनको सत्कार करते थे। इसी तरह क्रिश्चियंस भी, जो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्चेस मिलते हैं दुनिया भर में, उनमें आपको भारत में भी मिलेगा 52 AD में क्रिश्चियन चर्च, सीरियन क्रिश्चियन चर्च जो आपको केरला में मिलता है। इस्लाम का तो आपको पता है, आज दुनिया का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, जहां मोर देन 400,000 बड़े बड़े मस्जिद मस्कूज हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा भारत का रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को। इसी तरह हम भारत, आज का जो भारत, वो एक डाइवर्स पॉपुलेशन को हैंडल करता है, जिसमें हजारों तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं, हजारों तरह के लैंग्वेजेस हैं, 23 नेशनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ध्यान रखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब ऑफिशियल, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा, वो 23 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। 19,500 भाषाएं और बोलियां भारत में आज भी मातृभाषा, मदर टंग के रूप में बोली जाती हैं। हजारों एथनिक ग्रुप्स हैं, हजारों ट्राइब्स हैं, मेन स्ट्रीम से लेकर ट्राइब तक, और ये सब एक ही देश में एक ही भाव लेकर रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत इसी भारत भूमि की है, जो न केवल इंडियन लैंग्वेजेस की मदर है, यूरोपियन, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के जहां बहुत सारे लैंग्वेज की भी मदर, और आप कह सकते हैं मां भी है, मौसी भी है। आज की डेट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अमेरिका से 4 गुना बड़ा डेमोक्रेसी है, बड़ा नेचुरल डेमोक्रेसी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ माइटी आर्मी है भारत की। 2020 के जो आंकड़ा है, जो दुनिया में जो इस पर रिसर्च करते हैं, हर साल अपडेट करते हैं, मैंने बिल्कुल अपडेटेड डाटा लिया है। फोर्थ माइटी आर्मी है भारत की, सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर है दुनिया में, 11th रैंक रखता है भारत न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से पैदा करने वाला, फिफ्थ नेशन है दुनिया का जो मल्टी बिलियन डॉलर का स्पेस कॉमर्स बिजनेस करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ मैंने तारीफें की तो भारत मॉडर्न भारत बहुत अच्छा है, नहीं, हमने वो बताया जो आपको प्राउड फील कराए। हमारे में कमियां भी बहुत हैं, हम बहुत आगे जाने वाले हैं, हम एक ओवर पॉपुलेटेड देश हैं जहां इलिटरेसी आज भी बहुत है, भुखमरी आज भी बहुत है, करप्शन भी है, ब्लाइंड बिलीफ भी बहुत है, ये सब चीजें हैं और ये समय के साथ साथ ठीक होंगे। पर यह भी हमें जानना है कि हमारे देश की क्या महानताएं हैं, क्या गौरव हैं, जिस पर हम गर्व कर सकें, और जो हमने ठीक नहीं किया या धीरे धीरे हो रहा है वो भी ठीक होता जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबको दोबारा इस भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। अपने भारतीय होने पर या भारत से रिलेटेड होने पर गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।